शांति। रेगुलर चर्च में जाने वाली एक महिला कुछ दिनों से आना बंद हो जाती है और चर्च का पादरी एक दिन उसे पूछता है कि तुम तो बहुत रेगुलर आती थी, अब क्या हुआ? वो कहती है कि मैं आके क्या करूं, मैं यहां देखती हूं जितने चर्च में बैठे हुए लोग हैं, जब आपका प्रवचन चालू रहता है आधे तो सोते रहते हैं, कोई अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, कोई यहां वहां की बातें करते रहते हैं, चर्च में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते पर बाहर निकलते ही प्रदर्शन पर चिंतन करते रहते हैं, उसमें से तो कई तो ढोंगी है, बस दिखावे के लिए आते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, पर बाहर कुछ और अंदर कुछ और। ऐसे लोगों से मैं क्या करूं, मुझे तो आना ही नहीं है, इसलिए मैंने आना ही बंद कर दिया। और मैं देख रही हूं इतने सालों से किसी में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो जैसा था वैसा ही है। इधर लेक्चर चालू रहता है, वो लोग अपने व्हाट्सएप मोबाइल पे लगे रहते हैं, सबकी मुंडी नीचे और कुछ कुछ कर रहे होते, ये भी कोई चर्च है? तो कहता है ठीक है, वो कहते अब नहीं आऊंगी मैं, बहुत हो गया। तो फादर उसको कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये अलग अलग ढंग से सुनाया जाता है। वो कहते हैं कि ये लोग पानी का ग्लास पूरा भरा हुआ और चर्च के तीन चक्कर लगाओ, पर एक बूंद भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। तो वो, और ये तब करना है जब मेरा प्रवचन चालू रहेगा। तो वो लेती है पानी का ग्लास, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, आती है फिर कहती है, फिर उससे वो पूछता है अच्छा ये तीन चक्कर तुमने लगाओ, अब बताओ कि कौन क्या क्या कुसुर पुसुर कर रहा था? वो कहता है मुझे पता नहीं। कौन कौन मोबाइल में लगा हुआ था? वो कहता है नहीं पता, क्योंकि सारा ध्यान कहां था? पानी पर, क्योंकि पानी की एक बूंद भी ना गिरनी जाए, गिरनी पाए। तो वो कहती है कि, वो प्रश्न पूछता है कितने ऐसे हैं यहां जो ढोंगी है? वो तो मुझे नहीं पता, मेरा सारा ध्यान किधर था? केवल और केवल उस पानी पर, एक बूंद भी पानी की गिरने न पाए, ये शर्त थी। इसके लिए कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कौन आता है कोई नहीं आता है, किसमें परिवर्तन हो रहा है किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तुम्हें इन सब चीजों का कोई ख्याल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान किधर था? पानी पर। इसके लिए आज के मुरली में बाबा ने क्या कहा? अटेंशन प्लीज। जिसका सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, उसको बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, किस में परिवर्तन आया, किस में परिवर्तन नहीं आया, कौन खुद ही को ठग रहा है या दूसरों को ठग रहा है, या यज्ञ को धोखा दे रहा है, बाप को धोखा दे रहा है, या परिवार को धोखा दे रहा है, या दुनिया को धोखा दे रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। सारा ध्यान किधर है? अपने लक्ष्य की तरफ, गंतव्य की तरफ, मंजिल की तरफ। बस यहां पहुंचना है मुझे। ये बीच में बहुत सारी चीजें आ रही है, इनकी तरफ कोई मतलब नहीं। तो बाबा ने कहा, आज तुम कौन हो? सल्वेशन आर्मी। तुम कौन हो? रूहानी मिलिट्री। तुम कौन हो? अंडरग्राउंड। तो जब तुम अंडरग्राउंड हो तो तुम्हारा लक्ष्य है अटेंशन प्लीज। वो लोग अटेंशन प्लीज कहते हो तो एक जगह खड़े हो जाते हो, तुम लोग अटेंशन प्लीज कहते हो अर्थात बाप की याद में, अर्थात तुम भी गुम हो जाते हो। किसी मुरली में बाबा के महावाक्य है थे, इस संसार में ऐसे रहो जैसे संसार से गायब, इस संसार में ऐसे रहो जैसे संसार से गायब, लोग तुमको देखे ही नहीं, लोग तुमको देखे ही नहीं। ये तब होगा जब तुम अपने शरीर को भूले रहोगे, तो दूसरे भी तुम्हारे शरीर को नहीं देख पाएंगे। तुम अपने शरीर को ऐसे भूले रहो कि दूसरे तुमको देखे पर वहां है ही नहीं तुम, अदृश्य, द इनविजिबल मैन। तो इस संसार से गुम हो जाओ। आज सुबह की मुरली का वाक्य है, किसी मुरली में था, इस संसार से गायब हो जाओ। हमारे शरीर की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। वो तब होगा जब हमारा अपना भान, देह भान इतना भूला हुआ है। इसका शब्दशः अर्थ नहीं लेना है, भावनात्मक अर्थ लेना है, अर्थात हमारे शरीर की ओर कोई आकर्षित ना हो, क्योंकि हम अपने ही शरीर से नष्ट मोह है। तो बाबा के महावाक्य है आज, अटेंशन प्लीज। हम रूहानी मिलिट्री है, रूहानी आर्मी है, रूहानी सल्वेशन आर्मी है। इसके लिए हमें क्या होना होगा? अटेंटिव। और अटेंशन अर्थात, अटेंशन की परिभाषा, अटेंशन अर्थात टेंशन फ्री। ओके, इसे एक और हटा दो। अटेंशन अर्थात सतर्क, अटेंशन अर्थात जागरूक, अटेंशन अर्थात सचेत, अटेंशन अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन अर्थात ध्यान, अटेंशन अर्थात अवधान, अटेंशन अर्थात एकाग्रता, अटेंशन अर्थात साइलेंस, अटेंशन अर्थात वॉचफुल। एक एक चीज पता है क्या हो रही है, चौकस। अटेंशन अर्थात दुखी नहीं, उदास नहीं, जैसे एक व्यक्ति होता है किसी गुरु का शिष्य, उसे पकड़ लिया जाता है विद्रोह के जुर्म में और उसको कहा जाता है कल फांसी है। वो इतना घबराता है रात में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अचानक उसके गुरु आते हैं, दिखते हैं उसको स्वप्न में और कहते हैं तुम कल की चिंता मत करो, केवल आज में जियो। और जैसे ही उसको दिखता है कि आज, तो वो कहता है वो तो कल होने वाली है ना, कल का क्या करना है, आज खुश रहो और आराम से सो जाता है। अटेंशन, इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो बाबा के भिन्न भिन्न संबंध जिससे वो हमको कहता है अटेंशन प्लीज, या दूसरा हो सकता है कुछ परिस्थितियां जिसमें हमको अटेंशन रखना है। ये कब कहा जाता है अटेंशन प्लीज संसार में? कौन कहता है? टीचर कहता है जब स्टूडेंट्स बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, कहते हैं मे हैव योर अटेंशन प्लीज। स्पीकर कहता है, जज कहता है, कोई मैनेजर कहता है, कोई एंकर कहता है ऑडियंस के सामने कि अभी मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, ध्यान से सुनो। तो अटेंशन प्लीज, हम इसको संबंध के रूप में लेंगे। मुख्य बाबा के कितने संबंध है? 8। तो सबसे पहला संबंध है फादर। फादर कब कहता है अटेंशन प्लीज? बच्चे क्या कर रहा है? बच्चे बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत नटखट हो गया है, बात नहीं सुन रहा है, डिसोबीडियंट हो गया है, अपनी मनमर्जी कर रहा है। तब बाप कहता है, अब तुम सुनो मैं जो कहता हूं। गलती पे गलती किए जा रहे हो, भूल पर भूल किए जा रहे हो, एक ही भूल बार बार रिपीट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो यहां पर बाबा भी बाप के रूप में हमको कहता है अटेंशन। क्यों अटेंशन? क्योंकि तुमने एक ही भूल कितनी बार की है, और तीव्र पुरुषार्थ की एक परिभाषा कौन सी है? एक गलती जो हो गई हो दोबारा न करना। नई गलतियां भले करो पर पुरानी वाली रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक गलती फिर वही गलती करना, यह तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ही एक बार हुई हुई गलती रिपीट ना हो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ही एक सेकंड पहले जो स्थिति थी उससे अगले सेकंड आगे हो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ही तीसरी परिभाषा, जो सोचा वो किया, सोचा किया। लास्ट संडे की मुरली, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, कुमारों से मुलाकात, तीव्र कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले, जो आज स्थिति है उससे कल आगे हो और परसों उससे आगे हो, यह तीसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा तीव्र पुरुषार्थ की, सही समय पर ज्ञान याद आ जाना। ज्ञान तुमने बहुत सुना है परंतु समय पर ज्ञान याद आ जाना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। 21 जनवरी 1969, यज्ञ की सबसे पहले अव्यक्तवाणी। समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही पुरुषार्थ है। समय पर डेट भी याद आ जाना, यह भी पुरुषार्थ है। और समय पर परिभाषा भी याद आ जाना, यह भी पुरुषार्थ है। तो तीव्र पुरुषार्थ की तीन परिभाषा है। पहली बताई, एक गलती जो हुई है दोबारा ना करना। दूसरी बताई, एक सेकंड पहले जो स्थिति थी अगले सेकंड आगे हो। और तीसरी परिभाषा तीव्र पुरुषार्थ की, समय पर ज्ञान याद आ जाना, बस यही तीव्र पुरुषार्थ है। बहुत सारा ज्ञान होना और कुछ भी याद ना आना, ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। ढेर सारी मुरलियां पढ़ रही और टाइम पर एक भी याद नहीं आ रही, उससे तो अच्छा है एक ही पढ़ो, पर इतनी गहराई से पढ़ो, इतनी गहराई से पढ़ो कि वो अंदर रगो रगो में, रोए रोए में, नस नस में समा जाए, उसका हम स्वरूप बन जाए, ऐसी उसको पढ़े। तो एक बाप कब कहता है तीव्र पुरुषार्थ? जब बच्चे अलबेले बन जाते। एक बाप कब कहता है तीव्र पुरुष अटेंशन प्लीज? जब बच्चे वो नहीं कर रहे जो वो करना, वो जो वो कहता है, पटक रहे यहां वहां जा रहे, तो यहां पर बाप कहता है अटेंशन प्लीज। दूसरा है टीचर। टीचर कब कहता है तीव्र पुरुषार्थ के लिए या अटेंशन प्लीज के लिए? चिप क्लास में आता है। और टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। कल की मुरली में था, ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, टीचरों का टीचर है। तो जो वो पढ़ा रहा है, दिन भर की जो मुरली है, हर दिन की जो मुरली है, कितना उसको हमने ध्यान से पढ़ा? कल भी कहा था ना, ये काम पूरा करना बाकी है। किस किस किसका? आशीष भाई का हो गया 69 से लेके तो 2017 तक की सारी अव्यक्त मानी है, 1100 अव्यक्त मुंडली है टोटल। टोटल अव्यक्त वाणी है 69 से लेके तो 2017 तक जब तक बाबा आ रहे थे। तो टीचर कहता है अटेंशन प्लीज, अर्थात ये बहुत बड़ा काम है, इसमें लग जाओ। और ये करने के लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी जो कि बीच में है हमारे, अभी जो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो टीचर कह रहा है अटेंशन प्लीज, अर्थात सारी अव्यक्त मुरलियों की स्टडी। और यहां पर जो भी होमवर्क है वो ये नहीं समझना ये मेरा नहीं है, इसका है ये, तो ये समझना मेरा ही है। जैसे अभी मुरली दी है 18 जनवरी 1986 की, सभी को पढ़नी है, कोई एक ही नहीं, ताकि वो जब सुनाए तो उनको बताना ये थोड़ा छूट गया है तुम्हारा, ये भी है उसमें। नहीं तो यहां जो सुनाता है ऐसे समझते ये जो सुना रहा ये सब राइट है, ऐसे नहीं समझना, उसको बताना ये तुम भूल गए हो। तो जैसे कल के लिए काम दिया है स्वपरिवर्तन की शक्ति, उस पर सोचना है आज से। एक के लिए नहीं है केवल, महसूसता की शक्ति, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर तो मुरलिया है, वो मुरलिया सारी ढूंढ के लाओ, को कितनी मुरलिया है प्रभावती माता के पास, डेट्स है मुरलियों की, टॉपिक्स और मुरलियों की डेट प्रभावती माता के पास है, तो उनसे लो। महसूसता की शक्ति पर कौन कौन सी मुरलियां चली है, वो सारी मुरलियां, फिर उनको पढ़ना, फिर उसमें से पॉइंट्स निकालना, फिर इधर जोड़ना, कितना काम है ये। ये करने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना मतलब सेवा नहीं, सेवा करते रहना, पर सेवा करते करते जो मन जो भटकता है यहां वहां इधर उधर इसके उसके पास, यहां जाता है उधर जाता है, ये करूं वो करूं, ये सबसे खुद को मुक्त करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले भी सुनाया था, हम बहुत पहले एक सेंटर गए थे, वहां दो तीन ही स्टूडेंट थे, दो ही स्टूडेंट थे। हाँ, कोकण एरिया में। और वो बहन को पूछा, अच्छा यहाँ दो ही स्टूडेंट? तो कहती है हाँ बस, हम लोग सेवा बहुत करते पर यहाँ कोई आते नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग वो मच्छी खाने वाले हैं, उनको पता है ब्रह्मा कुमारी में गए तो छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए कोर्स तो करते पर बाद में नहीं आते, तो दो ही है। पर उसने कहा कि मैं अपना सारा समय मुरलियों की स्टडी में लगाती हूं। और वो बहन की स्थिति हमने देखा, बहुत पावरफुल, सुबह सुबह छोटा सा कमरा है वो बाबा का, 2 बजे उठ के योग में, फिर मुरली स्टडी, फिर मुरली क्लास, और दिन भर में भी थोड़ी बहुत जो भी सेवा की फिर से स्टडी। तो टीचर कह रहा है अटेंशन प्लीज। तीसरा सदगुरु, आज की मुरली में सदगुरु तारता है, आज की मुरली में वाक्य है सदगुरु क्या करता है, तारता है। तो सदगुरु कह रहा है अटेंशन प्लीज, अब समय है घर जाने का, और तुम कर क्या रहे हो विस्तार, अब समय है समेटने का, और यहां लोग विस्तार करने में लगे हुए। और ये समेटना अर्थात स्थूल से कम संबंध है इसका, मन से ज्यादा संबंध है। मन बहुत लोगों के विस्तार में चला गया है, लोगों के मोह में फंसा हुआ है, इसको फोन उसको फोन, इससे बात उससे बात, क्यों किसी से इतनी बातें करनी है, शांति से बैठे रहो, कॉल आएगा ना उतना उठा लेना, इससे बोलो उससे बोलो, उधर क्या हो गया, अभी वहां जाके आया, अभी पूछो अभी ठीक चल रहा है उधर, ठीक चल रहा है होगा ही, तुमको क्या करना है, शांति से बैठो, जा आए हो, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, अच्छा फिर और क्या बोलो, और बोलो और कुछ सुनाओ, फिर कब आओगे, और क्या चल रहा है उधर, सब स्टूडेंट्स वगैरह ठीक है, सेंटर वगैरह ओके है, और फिर शिवरात्रि में क्या करने वाले हो और सुनाओ? व्यर्थ विस्तार। सदगुरु कह रहा है अटेंशन प्लीज, अर्थात समेटो, अर्थात अब घर वापस जाना है, अर्थात मानसिक विस्तार जो किया है उसको कम कर दो, अर्थात साइकोलॉजिकल प्रिजन से स्वयं को मुक्त करो। साइकोलॉजिकल अर्थात मानसिक कारागार में हर चेतना बंद है, हर एक ने अपना एक कारागार खड़ा करके रखा है, उसमें वो खुद ही बंद है और यहां बैठ के चिल्लाता है मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ, और दूसरों को सुनाता है सिखाता है मुक्त हो जाओ इधर बैठकर, कि बिल्कुल तुम कर्म बंधन में नहीं फंसो, बिल्कुल ये सब छोड़ दो, क्योंकि वो खुद ही प्रिजन में बंद है इधर अंदर। दिस इज द साइकोलॉजिकल प्रिजन कहते हैं इसको, साइकिक प्रिजन, एक मानसिक कारागृह जिसमें आप चेतना बंद है, तो इससे अपने आप को मुक्त करना है। जिन लोगों को हमने पकड़ के रखा है कोई भी काम नहीं आएगा, पकड़ ढीली करनी है। सदगुरु चौथा साजन। साजन कहता है अटेंशन प्लीज, अर्थात मेरे को देखो, केवल केवल मेरे से वफादार रहो, इससे उससे प्यार क्यों करते हो, बेवफा बिल्कुल नहीं बनना है, वफा केवल मुझसे हो। अटेंशन प्लीज, अरे इधर देखो वहां क्या देख रहे हो, वो अच्छा है वो अच्छी है, इधर देखूं उधर देखूं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, किसी में भी इस संसार के कोई भी देहधारी हो किसी में भी बुद्धि ना जाए, सब तरफ से ध्यान एक तरफ। कल की मुरली में था, ये दुनिया छींची है, ये शरीर छींची है, ये दुनिया और ये शरीर, इस शरीर में क्या फंसोगे? आज की मुरली मैंने दूसरों को याद करने से फायदा ही क्या, आज की साकार मुरली दूसरों को याद करने से फायदा ही क्या, मुझे याद करो बस। अच्छा मुझे याद करने से उनको ज्यादा, उनको याद करने में ज्यादा फायदा है तो बताओ, वो दूसरी बात है। और दूसरी बात सूक्ष्म साइकोलॉजी की, जिस व्यक्ति को हम याद करते हैं उसके संस्कार उसके वाइब्रेशंस उसका स्वभाव धीरे धीरे हम में आने लगते हैं, उसकी आदतें, जैसे कोई तपस्वी को याद करो तो उसके वाइब्रेशंस हम में आने लगेंगे, किसी भोगी को याद करते रहो, कर कुछ नहीं रहे उसके साथ रहते नहीं है पर याद करते हैं उसको, संसार के एक्टर एक्ट्रेसेस उनके जीवन में क्या हो रहा है, कई लोग उसमें इंटरेस्टेड बहुत होते हैं, किसका क्या चल रहा है, किसको याद कर रहे हैं, संसारिक लोगों को, उनके वाइब्रेशंस उनकी जीवन शैली हमारी जीवन शैली बनने लगती है। और दूसरी तरफ उन आत्माओं को याद करो, जैसे महात्मा बुद्ध का चित्र है, तपस्वी तपस्वी चित्र है, महावीर का चित्र है तपस्वी, जीजस का चित्र है वैरागी, गुरु नानक देव जी का चित्र है वैरागी, नष्टमोह है ये आत्माएं, मोहम्मद का चित्र है नष्टमोह आत्माएं है, यज्ञ की दादी या ब्रह्मा मम्मा नष्टमोह आत्माएं है, चाहे धर्मस्थापक या इस तरह की आत्माएं यज्ञ की वरिष्ठ आत्मा, जिनको जो सांसारिक जो थे संसार में इसलिए कल्याण करना है बस, उनका अपना कुछ भी नहीं था, जो वैरागी थे तो वैरागी आत्माओं का संग करना है, जिन्हें अपनी कोई इच्छाएं नहीं है वो है ही केवल कल्याण के लिए, तो वो संस्कार हम में आने लगेंगे। तो तपस्वी आत्माओं को देखना याद करना। तो साजन कहता है मेरे सिवा किसी को भी याद नहीं करो, दूसरों को याद करोगे तो ये साजन कैसा है? ईर्ष्यालु साजन है। वो कौन सी मुरली है? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, मुरली है ये 79। जब बाप देखते हैं, मियां देखता है कि बीवी किसी और के साथ जा रही है, तो बाप को अच्छा नहीं लगता है, इस मियां को ठीक नहीं लगता है। तो बाप और साजन, उसके बाद में है बच्चा। वो कौन है? हमारा बच्चा है। ये बच्चा हमसे कहता है अटेंशन प्लीज मम्मी, तुम कर क्या रही हो? जैसे एक चित्र है ना, वो मम्मी मोबाइल लेके और बच्चे को उल्टा पकड़ के, वो कहते कम से कम मुझे सीधा तो पकड़ो, इतना मम्मी डूबी हुई है। मम्मी का ध्यान ही नहीं है। बच्चा कहता है मम्मी मम्मी मुझे याद तो करो कम से कम, कभी कभी मम्मी को टाइम ही नहीं है, अपनी इतनी बिजी है। तो शिव बाबा हमारा बच्चा है, वो कहता है अटेंशन प्लीज, कहां तुम्हारा ध्यान है, कहां तुम लगे हुए हो, समय कौन सा चल रहा है, कर क्या रहे हो? ये समय है तीव्र पुरुषार्थ का, ये समय है एक एक पल को सफल करने का, ये समय है एक मिनट भी टाइम वेस्ट ना करने का, ये समय है अपने विस्तार को सार में लाने का, ये समय है एकाग्र होने का, ये समय है तपस्या का, ये समय है वैराग का, सूक्ष्म वैराग अंदर ही अंदर, वैराग अंदर ही अंदर सूक्ष्म वैराग हो, यहां का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अंदर से सूक्ष्म अपनी तैयारी, अंदर से आज की मुरली में कहा शरीर से डिटैच हो जाओ, कितनी बार कहा मुरली में, जब तुम शरीर से डिटैच होगा आत्मा में पावर भरेगी। आत्मा में बल शक्ति कब आएगा? जब शरीर से डिटैच होते ही। ये भूत प्रेत इतने शक्तिशाली क्यों है? शरीर ही नहीं है, शरीर से डिटैच है। जैसे ही शरीर से डिटैच हो जब पावर आती है, शरीर से अलग रहो तो पावर आती रहेगी। शरीर का भान जितना रहेगा उतनी पावर कम। सुन बैठे रहो, किसी मुरली में था सुन हो जाओ, गुम हो जाओ, गायब हो जाओ, डेड साइलेंस हो जाए, सन्नाटा छा जाए। तो इस शरीर से क्या हो जाना है? डिटैच। बड़ा पावरफुल शब्द है डिटैच, अलग नहीं कहा, डिटैच डिटैच अलग कर दो। उसके बाद में है दोस्त। दोस्त कहता है, फ्रेंड कहता है क्या? अटेंशन प्लीज। कब? जब देखता है मेरा अपना दोस्त, हम दोनों ने साथ में एडमिशन ली और एक क्या कर रहा है और एक क्या कर रहा है, ध्यान ही नहीं है, कहीं डूबा हुआ है इश्क प्यार मोहब्बत किसी के, या तो गलत शौक एडिक्शंस कहीं ना कहीं फंस गया है। ये जो साल्वेशन आर्मी है, जो कि सबसे पहले लंदन में बूथ और उसकी वाइफ कैथरीन उन्होंने एस्टैब्लिश की थी 1860s में, साल्वेशन आर्मी, और उनका लक्ष्य था कि स्पिरिचुअल और फिजिकल ये दोनों रिलीफ लोगों को पहुंचाए, अनाथ आश्रम खोले, हॉस्पिटल्स खोले, बहुत कुछ किया साल्वेशन आर्मी ने, जो आज के मुरली में बाबा ने कहा कि तुम साल्वेशन आर्मी हो। तो ये साल्वेशन आर्मी तो बहुत पुरानी है। तो उनका एक काम है कि डी एडिक्शन सेंटर्स खोलना, रिहैब सेंटर्स। तो हमारा दोस्त एडिक्शंस में फंस रहा है, और द ग्रेटेस्ट एडिक्शन अभी कौन से है? दो, एक तो भोजन और दूसरा डिजिटल नगरी। ये दो सबसे बड़े एडिक्शन है। आधे लोग उसमें डूबे, आधे उसमें, कोई कोई दोनों में, इधर से उधर, उधर से उधर। इसलिए ज्ञान योग के लिए समय बहुत कम है, क्योंकि सारा चिंतन उसी में चल रहा है, आज बन क्या रहा है और आज खाना क्या है। दिन रात खाने का ही चिंतन है, क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। और व्यक्ति जितना खा रहा है उससे बहुत कम उसके शरीर को जरूरत है, आवश्यकता है। वो जगदीश भाई का एक आर्टिकल है, आज सब लोग पढ़ लेना, क्या ज्ञान सुधा, ज्ञान सुधा ना, उसमें एक आर्टिकल है भोजन पर। करते करते ब्राह्मण निकलते हैं बाहर और कहते हैं क्या हुआ, तो कहीं नहीं भाई साहब थोड़ा था, थोड़ा 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 करते करते हथौड़ा। उसके बाद में दोस्त के बाद बच्चा हो गया, उसके बाद मां है, वो मां कहती अटेंशन प्लीज, कब मिट्टी खाता है, मिट्टी में खेलता है, मिट्टी अच्छी लगती है उसको, पांच प्रकार के ड्रेस पहनता है, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त वाणी, 9 जनवरी 1980 आठ या नौ जनवरी 1980 सबसे पहला ड्रेस कौन सा नहीं पहनना है, सॉइल मिट्टी वाला ड्रेस नहीं पहनना है, अर्थात देहभान वाला ड्रेस नहीं पहनना है। दूसरा ड्रेस स्मेल बदबू वाला ड्रेस नहीं पहनना है, लगाओ दैहिक संबंधों में, मेरा ये मेरा वो, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा पति मेरा पत्नी, मेरे स्टूडेंट्स हमारी दीदी हमारी टीचर, लगाओ है मेरा ये मेरा वो, मेरा सेंटर मेरा घर मेरा डिपार्टमेंट मेरी चेयर। तुम मेरी चेयर में कैसे बैठ गए, मैं बैठता हूं रोज, मेरे योग करने की जगह है, तुमको पता नहीं, सब जानते हैं यहां तो। तीसरा चमड़ी स्किन, चमड़ी वाली ड्रेस नहीं पहनना है, दूसरों की चमड़ी को देखना, इसकी चमड़ी गोरी उसकी काली, ये ठीक नहीं है, इससे दूर रहो, ये काली ये गोरा है इससे थोड़ी दोस्ती करो, गोरे गोरे से दोस्ती करो, काले काले को दूर रखो। उसके बाद में दाग स्टेन, गंदे दाग वाला ड्रेस, गंदे दाग कौन से, अवगुणी दृष्टि, दूसरों के अवगुण देखना, और चौथा सबसे खतरनाक ब्लड स्टेन रक्त रंजित स्टेन, ब्लड स्टेन अर्थात बार बार विकर्म करना। ये पांच प्रकार के ड्रेस है। अव्यक्त मुरली 8 जनवरी 1980, मुरली की हेडिंग अलौकिक ड्रेस अलौकिक श्रृंगार। ये पांच प्रकार के ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनना है, देहभान लगाओ, चमड़ी, अवगुणी दृष्टि और विकर्म, बार बार विकर्म, एक बार नहीं विकर्म, ब्राह्मण बनने के बाद बार बार विकर्म, बार बार पाप, एक बार भी नहीं बार बार। तो वो कपड़े में क्या है, खून के धब्बे, और घूम रहे खुलेआम। कौन था ये, मां, मां क्या कहती है, अटेंशन प्लीज, ये पांच प्रकार के ड्रेस नहीं पहनने, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ड्रेस खरीद के लाया है, वो पहनते ही नहीं और ये पहन रहे हो पांच, फरिश्ता ड्रेस तुम्हारे लिए लाया है। तो ये हो गई मां। उसके बाद अगला संबंध, ये कितने हो गए, आठ, भाई, भाई भाई क्या कहते हैं, भाई को छोड़ दो, दूसरा लेते हैं ब्यूटिशियन। बाबा क्या है, ब्यूटिशियन है, क्या करता है वो, हमको बहुत सजाता है, और हम जाके क्या करते हैं, भैंस की तरह किधर जाके लिथड़ते हैं, मिट्टी में, मिट्टी में जाके लिथड़ते हैं, कितना श्रृंगार किया, इधर पाउडर लगाया, इधर पाउडर लगाया, इधर ये लगाया, उधर वो लगाया, और गए और लिथड़ के आ गए। तो ये नहीं करना है। यहां ब्यूटिशियन कहता है अटेंशन प्लीज, इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर खोला है संगम पर, मधुबन अर्थात ब्यूटी पार्लर, हर सेंटर अर्थात ब्यूटी पार्लर, हर क्लासरूम अर्थात ब्यूटी पार्लर, वहां क्या क्या करता है, कितना, एक घंटा बिठा के करता है कुछ 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 कुछ। अब पैसा भी नहीं, बिना पैसा का एक घंटा चेयर पे बिठाता है, सामने आईना रखता है और बाल करता है, फिर क्या क्या करते हैं पता नहीं, वो सब कुछ करता है, और फिर कहते हैं हाँ अभी ठीक हो गए एकदम, और जब जैसे हम बाहर गए, अभी वो बाहर निकला भी नहीं, वो निकल के देखता है क्या कर रहा है, उसको लगता होगा भैंस के आगे बीन बजाई मैंने तो एक घंटा तक। फिर भी करेगा, उसकी वो आशा का सागर है, ये उसकी नई महिमा है। एक भगवान क्या है, आशा का सागर, उसको है कभी निराश ही नहीं होता, वो फिर उम्मीद रखता है, उम्मीदों का सागर है वो, उसको लगता है नहीं आज तो लिथड़ गया, कल नहीं लिथड़ेगा, आई एम क्वाइट होपफुल, कल तो ये ठीक रहेगा, कल मैं इसको और अच्छे से सजाऊंगा। और एक नहीं सभी के प्रति आशावादी है, ये तो भयंकर आशा है उसकी। उसके बाद में खिवैया, आज की मुरली में आया, बाप खिवैया है, तुमको पार ले जाते हैं, मांझी है वो, ए मांझी, ओ मांझी, तो वो पार ले जाने वाला बोटमैन है। वो क्या कहता है, जब नाव में बैठो शांति से बैठो, इधर उधर हाथ मत डालो, गिरोगे नहीं तो लुढ़कोगे, नाव ही लुढ़क जाएगी, अटेंशन प्लीज। उसके बाद में वो डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या कहता है, अच्छी डायरेक्शन देता है, एक्टिंग सिखाता है, ये तुम्हारा ठीक नहीं था, रीटेक, ठीक से, ठीक 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 से करो, फिर से करो, ये तुमने ठीक से नहीं बोला, फिर से, चांस देता है, जब तक बेस्ट शॉट ना ही हो जाए रिकॉर्ड, तब तक करते रहते हैं, अच्छे से करो और अच्छे से और अच्छे से, तो रिकॉर्ड। उसके बाद में वो गार्डनर है, आज की मुरली में है, वो बागवान है, आज की मुरली में आया है, बाप है बागवान, तो वो बागवान है, क्या कहता है, उदास नहीं हो जाओ, कौन सा शब्द आता है मुरलियों में, फूल क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते और कुंभला जाते, नहीं दूसरा और एक है, नहीं नहीं क्या, तुम क्या करते हो, तुमको दूसरा शब्द है ना, वो फूलों के लिए वो हो जाते हो, तो वो नहीं होना है, नहीं आज की मुरली में नहीं है। तो गार्डनर क्या कहता है, बागवान क्या कहता है, कि तुमको खिले हुए रहना है, अटेंशन प्लीज, हमेशा खिले हुए, दुखी होना ही नहीं है यहां पर, ब्राह्मण जीवन में दुखी होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी सजा, दुखी रहते हैं इतना सब मिलने के बाद, इतना सब मिलने के बाद में उदासी है अंदर, कारण पता नहीं उदासी का, पर उदासी छाई है, रोते रहते हैं। हम अभी एक जगह गए थे, वहां एक बहन हमको मिले, ज्ञान में नहीं है, हमारे पुराने पहचान के, उसने एक बहुत अच्छी बात कही, खुश रहती है हमेशा, ज्ञान में इनसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, अध्यात्म से ही लेना देना नहीं है, पर उसका प्रिंसिपल है कि जीवन में खुश रहना चाहिए। तो हमारे साथ एक भाई भी थे, बीके भाई, तो उसके घर हम गए थे, तो उसने कहा आप हमेशा ही खुश रहते हो, बोले हाँ मुझे रुलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे रुलाने वाला इस दुनिया में तक पैदा नहीं हुआ है। कितनी ऑथोरिटी से कह दी उसने वो बात। और ब्राह्मण रोते रहते क्या कहे, कि मुझे रुलाने वाला दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ है, कितनी अच्छी बात है। और आधार क्या है, कोई ठोस प्रिंसिपल नहीं है जीवन का, भगवान है नहीं, कोई पता नहीं, बस खुश रहना है, जो भी करना है खुश रहना है, खुशी खुशी से करना है, ये प्रिंसिपल है। उसके बाद है वो गाइड है, तो गाइड हमको क्या कहता है, पंडा है वो, अटेंशन प्लीज, आगे खाइए, आधे वो है, अरे अरे कहां जा रहे हो, काई है नीचे, खाई और काई, अरे कहां जा रहे हो, वहां धुंध है, वहां मत जाओ, वहां पर फागी है, वहां भालू, वहां कोई ना कोई है, इधर आओ, मेरे पीछे पीछे आओ ना, तुम इधर उधर क्यों जाते हो। पर गाइड को फॉलो कौन करता है आजकल, गाइड कुछ समझाते रहता है, लोग कुछ और देखते रहते हैं, गाइड को जो करना है करना, हम अपना देखेंगे। तो ये गाइड कहता है अटेंशन प्लीज। उसके बाद में वो जज है, जज क्या कहता है, अटेंशन प्लीज, धर्मराज है वो, जरा भी कुछ गड़बड़ की ना तो देखना दंडे, खुदा का खौफ करो कहते हैं ना इस्लाम में, खुदा का थोड़ा तो खौफ करो, तो थोड़ा सा डरना भी चाहिए उससे। हाँ आज की मुरली में मानी और मोचरा, आज की मुरली में है। उसके बाद में वो ज्वेलर है, चोरी है, अटेंशन प्लीज, अरे क्या मिक्स हो रहा है, एलॉय, मनमत, परमत, जनमत, केवल श्रीमत, कुछ भी मिक्स ना होने पाया। फिर वो धोबी है, अटेंशन प्लीज, इतना अच्छा धोया था, फिर से दाग धब्बे लगा के आ गए। फिर उसके बाद वो जादूगर है, अटेंशन प्लीज, कल की मुरली में था ना, बाप क्या है, जादूगर, कहां था ये, किस बात के रेफरेंस में था, किस बात के रेफरेंस में था, कल की असाकार मुरली कहां था, अरे कल जो गई, नहीं वो दूसरा हो चुका, कल जो गई उसमें कहां था, ढूंढो। उसके बाद में वो सर्जन है, अटेंशन प्लीज, अपनी बीमारी को छिपाओ नहीं, परहेज रखो। हमको पता है, एक बार हम एक पेशेंट को गांव जाते थे पेशेंट्स को देखने, एक पेशेंट ऐसे छुपा के रखता था अपना मुंह। एक बार गए और देखा, बताओ ये क्या है, तो वो यहां से गांठ थी यहां तक और पूरा पस, इतना बड़ा गांठ वो छुपा के रखता था। उसको पकड़ के लेके आए, फिर गाड़ी में डाल के, इधर डॉक्टर अशोक मेहता सर आए थे, उन्होंने उसको ऑपरेट किया, पूरा निकाला और फिर लेके गए, भव्य स्वागत हुआ हमारा। गाड़ी में बिठाया था उसको, वो सब खुश हो रहे थे, ये ठीक होके आ गया। तो इतना बड़ा था इसका पूरा यहां तक, और पस बह रहा था उसमें, फंगेटिंग मास, छुपा के था। उसको लगता था लोगों को क्या लगेगा, पता चल गया मेरे बारे में तो, छुपा के रखता है, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इतना आदिवासी लोग, उनको पता नहीं रहे ना, डर लगता है। तो बाबा ने कहा, हाँ कपड़ा लगा के रखता था ऐसा, बाबा ने कहा छुपाओ नहीं, नासूर हो जाएगी बीमारी, जो है वो बता दो। उसके बाद में वो सुप्रीम कमांडर है, जो आज बोला तुम अंडरग्राउंड हो, रूहानी मिलिट्री हो, अटेंशन प्लीज, अटेंशन हो जाना है। उसमें है ना, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, सावधान होते तो सीधा, विश्राम मतलब आराम से, दो पैर इधर कर देते, पीछे हाथ कर देते, इधर उधर देखना चालू, अटेंशन मतलब नाक सीधा सामने देखना है, एकदम नाक इधर, हाथ ऐसे सीना बार, अटेंशन विश्राम, इधर उधर अटेंशन। उसके बाद में वो माशूक है, मुचरोस में आ गया, हस्बैंड में, फिर वो पहरेदार है, वॉचमैन है, अटेंशन प्लीज, जागते रहो, रात भर चिल्लाते हुए घूमता है पहरेदार, वॉचमैन, जागते रहो, जागते रहो, क्यों, क्योंकि चोर उचक के घूम रहे हैं, सब माया, कभी भी चोरी हो सकती है तुम्हारे खजानों की। और लास्ट वो योगाचार्य है, तो योगाचार्य क्या कहता है, मैंने जो योग सिखाया, मैंने जो ज्ञान सिखाया, उसको क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, याद करते रहो। आज की मुरली में ज्ञान सहित याद करने से पाप कटते हैं, बड़ा अच्छा वाक्य आज की मुरली में एक जगह, ज्ञान सहित याद करने से पाप कटते हैं। तो ये इतने सारे संबंधों के आधार पर क्या, अटेंशन प्लीज। एक दूसरा चिंतन ये भी हो सकता है जो आपको करना है आज, किन किन परिस्थितियों में बाप कहते हैं अटेंशन प्लीज, कौन कौन सी परिस्थितियां, ये था संबंध से आधार पर टॉपिक, ये एक दूसरा चिंतन हो सकता है परिस्थितियों के आधार पर, कौन सी परिस्थितियां आई तो अटेंशन प्लीज, कौन सी चीज करने जा रहे अटेंशन प्लीज, कौन से पाप विकर्म या बातें अटेंशन प्लीज। तो ये शब्द आज घुमाते रहना है बुद्धि में, अटेंशन प्लीज, और किसको बताना है ये, अपने आप को, जैसे वो जेन मास्टर था बोकाजू, वो बोकाजू क्या करता था, बोकाजू उठो, बोकाजू जागो, बोकाजू क्या कर रहे हो, वो अपने आप से बात करते रहता था। उसका शिष्य आके पूछता है, आप किससे बात कर रहे हो, कहते अपने आप को, अपने आप को समझाता हूं, बोकाजू उठो क्या कर रहे हो। और फिर बोकाजू जब बूढ़ा होने लगा तब वो बात करना बंद कर दिया। शिष्य ने पूछा अब क्या हुआ, अब बात न करना बंद कर दिया, वो कहता है अब बोकाजू हमेशा ही जागा रहता है, अब मुझे ये बोलने की जरूरत ही नहीं, अब ऐसी अवस्था आ गई है कि एक मिनट एक पल भी ऐसा नहीं है कि मैं सोया हूं, मैं नींद में हूं तो भी जागा हुआ हूं, इतना स्वयं पर अटेंशन है, ऐसी जागृत अवस्था है कि निरंतर पता है अब कोई गलती होने की चांस, होने का चांस ही नहीं है, निरंतर जागरण है बोकाजू। इसलिए जागरण। तो मधुबन जब जागेगा तब क्या जागेगा? सारा विश्व जागेगा। भोर हुई है, क्या हुआ है? भोर हुई है, फिर जागा मधुबन, फिर महकी हवा, फिर महकी हवा, फिर महकी हवा, फिर महकी हवा, फूलों से मिली थी कोई किरण, फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर मौसम रस छलकाने लगा, फिर कलिए में रंग आने लगा, फिर कोई कली बहकने लगी, फिर कोयल वन में गाने लगी, फिर गूंजा मेरे मन का आंगन, फिर भोर भई जागा मधुबन। तो मधुबन जब जागेगा, प्रभात यहां जब होगी तो संसार में प्रभात होगी, जब मधुबन निवासी जागेंगे तो सारे संसार की आत्माएं अपने आप जागेंगी, सारे ब्राह्मण जागेगा। इसके लिए सबसे पहला अटेंशन प्लीज किसके लिए? मधुबन के लिए, स्वयं के लिए, दूसरों को जगाने वालों के लिए। जगाने वाले ही सो गए तो क्या कहेंगे? ओम शांति। Thank you.